एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करते हैं ग्रंथसार, विश्व की श्रेष्ठ कृतियों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। नमस्कार, ग्रंथसार में आपका स्वागत है। आज हम 20वीं सदी के साहित्य के एक बहुत ही अहम उपन्यास अल्बेर कामू के द स्ट्रेंजर यानी अजनबी पर बात करेंगे।
हाँ, लेत्रोंजे, मतलब ये एक ऐसी किताब है जो दिखने में तो बड़ी सीधी साधी लगती है पर अपने अंदर बहुत गहरी और कभी कभी परेशान करने वाली सच्चाइयां छुपाए हुए।
बिल्कुल, अल्बेर कामू 1913 से 1960, एक ऐसा नाम जो दर्शन और साहित्य दोनों दुनियाओं में बहुत सम्मान से लिया जाता है।
हाँ, और फ्रांसीसी अल्जीरिया में पैदा हुए लेखक, दार्शनिक, पत्रकार, और 1957 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार भी मिला उन्हें। उनका जो लेखन है ना, उस पर भूमध्य सागर की धूप छांव का और उस समय के औपनिवेशिक अल्जीरिया के माहौल का गहरा असर दिखता है।
सही कहा। और दिलचस्प बात ये भी है कि लोग उन्हें अक्सर अस्तित्ववादी यानी एग्जिस्टेंशियलिस्ट कहते हैं।
हाँ, कहते हैं,
लेकिन कामो खुद को अब्सर्डिस्ट मानते थे, निरर्थकता का दर्शन, है ना?
बिल्कुल, अब्सर्डिज्म। ये फलसफा इस बात पर टिका है कि हम इंसान तो जिंदगी में मतलब ढूंढते रहते हैं, पर ये दुनिया, ये ब्रह्मांड बिल्कुल खामोश है, उदासीन है, हमारी इस तलाश का कोई जवाब नहीं देती।
और अजनबी तो 1942 में आई थी, मतलब जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, फ्रांस पर जर्मनी का कब्जा था, माहौल बड़ा अजीब था।
हाँ, और उपन्यास की सेटिंग भी खास है, फ्रांसीसी अल्जीरिया की, वो तेज धूप वाली औपनिवेशिक धरती। कह सकते हैं कि ये किताब कामू के अब्सर्ड दर्शन को समझने के लिए एक दरवाजे की तरह है।
तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि अजनबी की कहानी को परत दर परत समझें, इसके जो मुख्य पात्र हैं मरसो, उनके अजीब से लगने वाले व्यवहार को, उसके पीछे के दर्शन को टटोलें।
हाँ, और कहानी के जो मुख्य मोड़ हैं, जो दार्शनिक मुद्दे हैं, उन पे भी बात करें।
चले तो फिर मरसो से ही शुरू करते हैं। उपन्यास की शुरुआत ही इतनी यादगार है।
हाँ, वो लाइन, माँ आज मर गई या शायद कल, मैं ठीक से नहीं कह सकता, मतलब पहली ही लाइन से पता चल जाता है कि ये किरदार कैसा है, एकदम तटस्थ, जैसे भावनाओं से कोई लेना देना ही ना हो।
हाँ, जैसे जिंदगी को बस देख रहा हो, महसूस नहीं कर रहा।
बिल्कुल, और ये कोई क्रूरता नहीं है शायद, ये एक तरह की अजीब सी ईमानदारी है, वो समाज के दिखावे, रस्मों रिवाजों से एकदम कटा हुआ है।
यहाँ तक कि माँ की मौत पर भी वो बस एक घटना की तरह उसे नोट करता है। उसके लिए शायद गर्मी, कॉफी का स्वाद, सिगरेट का धुआं, ये चीजें ज्यादा असली हैं।
हाँ, इसका सबसे अच्छा उदाहरण तो माँ के अंतिम संस्कार वाला सीन है। कोई आंसू नहीं, कोई दुख का दिखावा नहीं, वो वहां है पर जैसे है भी नहीं। कॉफी पी रहा है, सिगरेट पी रहा है, गर्मी से परेशान है, लोगों को ये अमानवीय लग सकता है।
हाँ, लग सकता है,
पर कामू दिखाते हैं कि ये मरसू की सच्चाई है, बिना किसी नकाब के।
ये तटस्थता वाकई सोचने पे मजबूर करती है। तो माँ के अंतिम संस्कार के बाद क्या होता है, कहानी कहाँ जाती है?
कहानी भी मरसू की तरह ही चलती है।
हाँ,
मतलब कोई तयशुदा रास्ते पर नहीं।
हाँ,
अगले ही दिन, अंतिम संस्कार के ठीक अगले दिन, वो समंदर किनारे जाता है तैरने।
अगले ही दिन?
हाँ, और वहां उसे मिलती है मारी कार्डोना, जो पहले उसके साथ काम करती थी। वो साथ में तैरते हैं, फिर एक कॉमेडी फिल्म देखते हैं और रात भी साथ गुजारते हैं।
एक तरफ मौत, दूसरी तरफ जिंदगी का ये पहलू।
बिल्कुल, ये कॉन्ट्रास्ट, ये विरोधावास, ये उपन्यास में बार बार आता है, मौत और जिंदगी का ये अजीब सा साथ। शायद यही एब्सर्ड है।
हाँ, शायद। और फिर कहानी में रेमंड सिंटेज आता है।
हाँ,
मरसो का पड़ोसी।
हाँ, रेमंड। उसका किरदार थोड़ा ग्रे है, लोग कहते हैं दलाल है। वो अपनी प्रेमिका से बदला लेना चाहता है क्योंकि उसे लगता है वो बेवफा है,
और वो मरसो से मदद मांगता है।
हाँ, एक खत लिखवाने में, ताकि वो लड़की वापस आ जाए और रेमंड उसे सबक सिखा सके, और मरसो वो हाँ कर देता है
बिना सोचे समझे।
हाँ, बस ये सोच करके, ऐसा ना करने का कोई कारण नहीं दिखता। ये लाइन बहुत कुछ कहती है उसके बारे में।
ऐसा ना करने का कोई कारण नहीं दिखता, कमाल है। ये निष्क्रियता है या नैतिकता से पूरी तरह दूरी,
कह सकते हैं। वो चीजों में शामिल होता है पर जैसे उनके नतीजों से उसे कोई मतलब ही ना हो,
और ये बात उसे आगे मुसीबत में डालती है।
बिल्कुल, रेमंड उस लड़की को पीटता है, मरसो आवाजें सुनता है, पुलिस आती है तो मरसो रेमंड के हक में गवाही दे देता है कि हाँ, लड़की बेवफा थी,
बिना किसी हिचक के।
बिना किसी हिचक के। पूरी तरह तकस्थ, जैसे सही गलत का कोई पैमाना ही ना हो उसके पास।
और यही रवैया, यही उदासीनता उसे उस मोड़ पर ले आती है जहां से सब कुछ बदल जाता है, वो बीच वाली घटना।
हाँ, वो उपन्यास का टर्निंग पॉइंट है। रिमंड सबको अपने दोस्त के बीच हाउस पर ले जाता है वीकेंड के लिए। मरसो, मारी सब होते हैं,
और वहां उनका सामना होता है अरब लोगों से।
हाँ, जिनमें रेमंड की प्रेमिका का भाई भी है। कहा सुनी होती है, झगड़ा होता है, रेमंड को चाकू लग जाता है।
माहौल गर्म हो जाता है
बहुत। फिर थोड़ी देर बाद मरसो अकेले ही बीच पर टहलने निकल जाता है। रेमंड की पिस्तौल उसके पास होती है,
अकेले पिस्तौल के साथ।
हाँ, और कामो यहाँ सूरज, गर्मी, रोशनी, इन सबका वर्णन बहुत बारीकी से करते हैं, जैसे वो धूप, वो तपिश, वो खुद एक किरदार बन गई हो। मरसो को फिर वही अरब आदमी मिलता है, अकेले एक पानी के सोते के पास।
और फिर वो पल आता है।
हाँ, अरब अपनी जेब से चाकू निकालता है। धूप चाकू पर पड़ती है, उसकी चमक मरसो की आंखों में लगती है। मरसो को लगता है जैसे जैसे वो पूरी धूप, पूरा बीच उसकी पीठ पर दबाव डाल रहा हो।
एक शारीरिक अनुभव।
बिल्कुल, सिर्फ शारीरिक, तपिश, जलन, दबाव, और वो ट्रिगर दबा देता है। पहली गोली, फिर एक पल रुककर चार और गोलियां।
चार और? क्यों?
कोई वजह नहीं, कम से कम कोई तार्किक वजह नहीं, बस उस पल की वो असहनीय शारीरिक सनसनी। ये काम एकदम बेमतलब, निरर्थक लगता है।
और यहीं से मरसों की जिंदगी का एक हिस्सा खत्म होता है और दूसरा शुरू, समाज के साथ उसका टकराव।
हाँ, यहीं से उपन्यास का दूसरा भाग शुरू होता है, मरसों की गिरफ्तारी और मुकदमा।
और अब कहानी का फोकस बदल जाता है ना, अब जुर्म से ज्यादा मुजरिम की आत्मा पर बात होती है।
सही कहा। वो जो जांच मजिस्ट्रेट है वो हैरान है कि मरसू को कोई पछतावा क्यों नहीं है, वो भगवान को क्यों नहीं मानता, वो उसे एंटी क्राइस्ट तक कह देता है,
क्रॉस लहराता है उसके सामने।
हाँ, पर मरसू पर कोई असर नहीं होता।
और मुकदमा, वो तो और भी अजीब है।
हाँ, वो तो जैसे एक तमाशा बन जाता है। वो कत्ल का मुकदमा कम और मरसू के चरित्र का, उसके जीने के ढंग का मुकदमा ज्यादा लगता है।
सरकारी वकील भी इसी बात पर जोर देता है कि ये आदमी दिल से अपराधी है।
बिल्कुल, वो माँ के अंतिम संस्कार वाली बातें उछालता है कि वो रोया नहीं, कॉफी पी, सिगरेट पी, ये सब उसके खिलाफ सबूत बन जाते हैं।
मारी की गवाही का क्या होता है?
मारी तो सच बोलती है कि उनका रिश्ता माँ के गुजरने के अगले दिन शुरू हुआ, पर वकील इसे भी मरसो के चरित्रहीन होने का सबूत बना देता है।
मतलब उसकी ईमानदारी ही उसके खिलाफ जा रही है।
हाँ, सेलेस्ट जैसे दोस्त जो उसे अच्छा आदमी कहते हैं, उनकी बात भी तोड़ मरोड़ दी जाती है। और वकील का वो जुमला कि मरसो ने अपराधी के दिल से माँ को दफनाया, वो तो जैसे कील ठोक देता है।
ये कितनी बड़ी विडंबना है। समाज दिखावे का आदि है और मरसो को उसकी सच्चाई की सजा मिल रही है, वो खुद कैसे देखता है सबको?
वो तो जैसे कोई नाटक देख रहा हो जिसमें वो खुद एक किरदार है, पर उसे समझ नहीं आ रहा कि चल क्या रहा है। वो अपने ही मुकदमे में एक अजनबी है।
और जब उसे बोलने का मौका मिलता है
तो वो बस वही कहता है जो उसे सच लगता है कि उसने अरब को सूरज की वजह से मारा।
सूरज की वजह से?
हाँ, ये उसकी अपनी सच्चाई है, शारीरिक सच्चाई, पर कोर्ट में ये बात या तो बेवकूफी लगती है या झूठ, सब मजाक उड़ाते हैं।
कोर्ट को तो कारण चाहिए, मकसद चाहिए, जलन, गुस्सा, बदला, कुछ तो हो।
हाँ, पर मरसो के पास सिवाय उस धूप और तपिश के एहसास के और कुछ नहीं है बताने को।
और फैसला?
मौत की सजा, गिलोटिन से। वजह बताई जाती है पूर्व नियोजित हत्या, पर असल वजह यह है कि वो समाज के बनाए नियमों में फिट नहीं बैठता। वो वैसी भावनाएं नहीं दिखाता जैसी दिखानी चाहिए, वो नॉर्मल नहीं है।
तो उसका जुर्म ही उसकी ईमानदारी बन गया। अब दूसरे किरदारों की बात करें तो मारी, वो क्या दर्शाती है?
मारी, वो जिंदगी की सहजता है, शारीरिक सुख, प्यार, शादी की इच्छा, मतलब आम इंसानी ख्वाहिशें वो मरसो की तरफ खींचती है, पर वो समाज के दायरे में ही सोचती है और अनजाने में उसकी गवाही मरसो को नुकसान पहुंचा देती है।
और रेमंड, जिसकी वजह से ये सब शुरू हुआ,
रेमंड जुनून, हिंसा, असुरक्षा, वो सब दिखाता है। वो मरसो का एकदम उलट है। मरसो जहां उदासीन है, रेमंड भावनाओं में बहता है, बदला लेना चाहता है। वो कहानी को आगे बढ़ाने वाला एक तरह का कैटलिस्ट है।
पादरी की भूमिका भी आखिर में अहम हो जाती है।
आ, चैपलिन, वो संगठित धर्म का प्रतीक है। वो समाज की जरूरत दिखाता है कि हर चीज का कोई मतलब होना चाहिए, मरने के बाद भी कोई उम्मीद होनी चाहिए। वो जबरदस्ती मरसो को समझाने आता है, भगवान की बात करता है,
और यहीं मरसो का वो विस्फोट होता है।
बिल्कुल, वो चैपलिन की मुलाकात ही मरसो के अंदर के दबे हुए गुस्से और उसके दर्शन को बाहर लाती है।
और वो अरब पात्र जिनका नाम तक नहीं लिया गया,
उनका ज्यादा जिक्र नहीं है, लेकिन उनकी मौजूदगी अल्जीरिया के उस औपनिवेशिक माहौल और नस्लीय तनाव की तरफ इशारा करती है। जिस अरब को मारा गया उसका नामहीन और आवाजहीन होना ये शायद उस वक्त के मूल निवासियों की स्थिति का प्रतीक है।
चलिए अब मरसू की आखिरी मानसिक स्थिति और एब्सर्डिज्म पर आते हैं। जेल में मौत का इंतजार करते हुए उसमें क्या बदलाव आता है?
जेल में वो धीरे धीरे ढल जाता है, सोता ज्यादा है, पुरानी बातें याद करता है, लेकिन जो असली बदलाव है वो चैपलिन से बहस के बाद आता है।
उस बहस में क्या होता है खास?
चैपलिन उस पर विश्वास करने पछताने का दबाव डालता है। मर्सो, जो हमेशा से उदासीन रहा है, आखिरकार फट पड़ता है। वो चीखता है, अपना सारा गुस्सा, अपनी सारी भड़ास निकालता है। वो चैपलिन की झूठी उम्मीदों को नकार देता है।
और इस गुस्से के बाद उसे शांति मिलती है।
हाँ, एक अजीब सी स्पष्टता, और यही कामों का एब्सर्डिज्म का फलसफा सामने आता है। ये एहसास कि इंसान मतलब ढूंढता है पर यह दुनिया खामोश है, उदासीन है।
मर्सो अब एब्सर्ड हीरो बन जाता है। वो इस निरर्थकता को ना सिर्फ पहचानता है बल्कि उसे स्वीकार करता है।
बिल्कुल, वो उस मुकाम पर पहुंचता है जहां वो कहता है कि उसने खुद को दुनिया की नर्म उदासीनता, जेंटल इनडिफरेंस ऑफ द वर्ल्ड के लिए खोल दिया है। उसे लगता है कि ये दुनिया भी उसी की तरह है, इंसानी उम्मीदों और दुखों से बेपरवाह। और इसी एहसास में उसे आजादी मिलती है। वो कहता है, मैं तब भी खुश था और मैं अब भी खुश हूं।
ये तो कमाल की बात है। और उसकी आखिरी इच्छा वो भी इसी से जुड़ी है।
हाँ, वो भी बहुत अजीब है। वो चाहता है कि जब उसे फांसी दी जाए तो बहुत भीड़ हो और लोग उसका स्वागत नफरत भरी चीखों से करें।
नफरत भरी चीखों से क्यों?
क्योंकि ये उसके अजनबी होने की, समाज से उसके पूरी तरह कट जाने की सबसे बड़ी पुष्टि होगी। वो समाज से स्वीकृति नहीं चाहता, वो चाहता है कि समाज उसकी इस अलग थलग सच्चाई को स्वीकार करे, भले ही नफरत से।
अगर हम मुख्य विषयों को समेटें तो निरर्थकता या एब्सर्डिटी तो है ही।
हाँ, और दुनिया की उदासीनता, वो सूरज एक बड़ा प्रतीक है इसका। फिर समाज और व्यक्ति का टकराव, ये सवाल कि हमें समाज के हिसाब से चलना चाहिए या अपनी सच्चाई पर टिके रहना चाहिए।
जीवन का कोई मतलब है या नहीं, ये सवाल भी। और शारीरिक दुनिया का महत्व, मर्जो के लिए तो वही सच है।
हाँ, और वो औपनिवेशिक माहौल और हिंसा की परत भी है।
लिखने का अंदाज भी बहुत अलग है, फर्स्ट पर्सन में, बिल्कुल सपाट, भावनाहीन तरीके से।
हाँ, फ्रेंच में पासे कॉम्पोजे का इस्तेमाल इसी असर के लिए किया गया, जैसे कोई रिपोर्ट पढ़ रहे हों। ये मर्सो के भावनात्मक अलगाव को दिखाता है और दो हिस्सों में बंटी कहानी, पहले घटनाएं फिर उनका मतलब निकालने की कोशिश।
प्रतीक भी बहुत हैं, सूरज, कोर्टरूम, समंदर, और विडंबना तो भरी पड़ी है, अपनी ईमानदारी की सजा पाना, इससे बड़ी विडंबना क्या होगी।
पढ़ने वाले पर इसका असर बड़ा गहरा होता है। शुरू में शायद मर्सो से चिढ़ो या समझ ना आए, पर धीरे धीरे, खासकर मुकदमे के दौरान, समाज का पाखंड देखकर सहानुभूति मर्सो की तरफ जाने लगती है।
हाँ, हम सोचने लगते हैं कि ये समाज के नियम कितने खोखले हैं, ये किताब हमें चैन से नहीं बैठने देती। प्रामाणिकता क्या है, न्याय क्या है, जिंदगी का मतलब क्या है, ये सवाल खड़े कर देती है।
सही कहा, ये हमें अपने अंदर झांकने को कहती है। क्या हम भी कभी कभी मर्सो की तरह दुनिया से कटे हुए महसूस नहीं करते? क्या हम हमेशा वही महसूस करते हैं जो हमें दिखाना चाहिए?
शायद ये कहानी उस हिम्मत के बारे में है जो अपनी सच्ची, भले ही वो कड़वी हो, उस भावना पर टिके रहने के लिए चाहिए, भले ही दुनिया उसे नकार दे।
और शायद ये भी कि इस बड़ी सी उदासीन दुनिया की सच्चाई को मान लेने में भी एक तरह की आजादी मिल सकती है, एक अजीब सी शांति।
यह संवाद यहीं समाप्त होता है। फिर मिलेंगे विश्व साहित्य की एक और अनूठी कृति के साथ। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।